इतिहास क्या है? ई.एच. कार के अनुसार इतिहासकार तथा इतिहास के तथ्य एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। बिना तथ्यों के इतिहासकार आधारहीन एवं व्यर्थ है। बिना इतिहासकार के तथ्य जीवन विहीन तथा निरर्थक होते हैं। अतएव इतिहास क्या है? इस प्रश्न के प्रति मेरा उत्तर यह है कि इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच स्थित अंतर्क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है। इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच स्थित अंतर्क्रिया की यह आदान प्रदानात्मक प्रक्रिया, जिसे मैंने वर्तमान तथा अतीत के बीच संवाद की संज्ञा प्रदान की है, अगोचर अथवा एकाकी व्यक्तियों के बीच होने वाला संवाद नहीं, अपितु वर्तमानकालिक समाज तथा अतीतकालिक समाज के बीच होने वाला संवाद है। अतीत केवल वर्तमान के संदर्भ में बुद्धिगम्य होता है और वर्तमान को संपूर्णतः केवल अतीत के प्रकाश में समझा जा सकता है। मनुष्य को अतीतकालिक समाज को समझने के योग बनाना तथा वर्तमानकालिक समाज के ऊपर उसके नियंत्रण की वृद्धि कराना इतिहास का यह द्विविध कर्तव्य है। इतिहास एक संघर्ष प्रक्रिया है जिसमें परिणामों हम उन्हें अच्छा माने या बुरा की प्राप्ति कुछ वर्गों द्वारा दूसरे वर्गों की कीमत पर प्राप्त होती है। दुख इतिहास में अंतर्निहित हैं। यह एक जटिल समस्या है क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसके द्वारा कुछ लोगों के अपेक्षाकृत अधिक कल्याण को अन्यों के बलिदान के साथ रखकर तौला जा सके, किंतु इस प्रकार का कोई मापदंड होना चाहिए। यह समस्या केवल इतिहास की नहीं, दिन प्रतिदिन के जीवन में हम प्रायः अच्छाई की प्राप्ति की आशा में दो बुरी बातों में कम बुरी को चुनते अथवा करते हैं। इतिहास में कभी कभी इस समस्या का विवेचन प्रगति की कीमत अथवा क्रांति की कीमत जैसे पदों से अभिव्यक्त होता है, किंतु यह भ्रामक है। किंतु क्या वैज्ञानिक के विपरीत यह तथ्य कि इतिहासकार अपने वस्तु सामग्री के स्वरूप के कारण नैतिक निर्णय की इन समस्याओं से संश्लिष्ट हो जाता है? इतिहास को किसी इतिहासेतर मूल प्रतिमान पर निर्भर होना नहीं उपलक्षित करता? मेरे विचार से नहीं। हम यह मान लें कि अच्छा तथा बुरा के समान अमूर्त अवधारणाएं इतिहास के दायरे के बाहर हैं, किंतु फिर भी इन अवधारणाओं की ऐतिहासिक नैतिकता के अध्ययन में वही भूमिका होती है जो गणितीय तथा तर्कशास्त्रीय नियमों की भौतिक विज्ञान में। ये विचार की अपरिहार्य कोटियां हैं, किंतु जब तक इनमें विशिष्ट सामग्री का आरोपण नहीं किया जाता तब तक इनका कुछ भी अर्थ अथवा व्यवहार नहीं होता। दूसरे शब्दों में इतिहास अथवा दैनिक जीवन में प्रयोज्य नैतिक अवधारणाएँ बैंक के चेक की तरह होती हैं। उनका एक लिखित भाग होता है जिन पर स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा प्रजातंत्र जैसे अमूर्त शब्द लिखे होते हैं, किंतु इस चेक का कोई मूल्य नहीं होता जब तक कि खाली अंश में यह न भरा जाए कि हम किसको कितनी स्वतंत्रता देना चाहते हैं, किसे अपना समान समझते हैं और किसी सीमा तक। जिस रूप में हम जिस समय पर चेक को भरते हैं वह इतिहास का विषय है। जिस प्रक्रिया में अमूर्त नैतिक अवधारणाओं को विशिष्ट ऐतिहासिक सामग्री प्रदान की जाती है वह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। इतिहास गति है एवं गति तुलना उपलक्षित करती है। इसी कारण इतिहासकारों द्वारा नैतिक निर्णय के अभिव्यक्ति अच्छा तथा बुरा जैसे एकांतिक शब्दों से न होकर प्रगतिशील प्रतिक्रियावादी जैसे तुलनात्मक स्वरूप वाले शब्दों द्वारा होती है। इनसे विभिन्न समाजों तथा ऐतिहासिक प्रपंचों को किसी एकांतिक प्रतिमान के संदर्भ में न रखकर पारस्परिक संबंध के संदर्भ में रखकर परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक वर्ग के अपने मूल्य होते हैं तथा वह बाह्य मूलों की घुसपैठ से अपनी रक्षा करता है। समाज अथवा इतिहास से पृथक अमूर्त प्रतिमान अथवा मूल्य एक मिथ्या अवधारणा है। श्रेष्ठ इतिहासकार वह है जो अपने मूल्यों से इतिहास निर्धारित स्वरूप को स्वीकार करता है, वह नहीं जो अपने मूल्यों की वस्तुनिष्ठता इतिहास के बाहर होने का दावा करता है। इतिहास की अपने से बाहर स्थित किसी अन्य वस्तु पर आश्रितता नहीं होती और यह तथ्य उसे किसी भी अन्य विज्ञान से पृथक करता है। वस्तुतः वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक तथा इतिहासकार एक ही अध्ययन के विभिन्न शाखाओं से संबद्ध है। मनुष्य द्वारा अपने परिवेश का बोध तथा उस पर नियंत्रण में वृद्धि इतिहासकार तथा भौगोलिक वैज्ञानिक दोनों ही व्याख्या प्रदान करने का प्रयास करते हैं। किसी भी वैज्ञानिक के समान इतिहासकार भी सदैव यह प्रश्न करता है, क्यों? जिसे हम वर्तमान कहते हैं उसका केवल सैद्धांतिक अस्तित्व है। यह अतीत तथा भविष्य के बीच एक काल्पनिक विभाजक रेखा है। चूंकि अतीत तथा भविष्य सभी कालांतराल के अंग हैं, अतः अतीत में रुचि एवं भविष्य में रुचि परस्पर संबद्ध है। इतिहास परंपरा के साथ प्रारंभ होता है और परंपरा का अर्थ है अतीत की आदतों तथा शिक्षाओं का भविष्य में संक्रमण। अतीत के विवरण को भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए सुरक्षित रखा जाता है, अतः इतिहासकार में भविष्य के प्रति रुचि सदैव ही स्थित होती है। क्यों? इस प्रश्न के साथ इतिहासकार किस ओर यह प्रश्न भी पूछता है, प्रगति अथवा सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ? यह प्रश्न व्यर्थ है और इसी प्रकार इतिहास के अंतिम लक्ष्य की उपकल्पना से भी बड़ी भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं। इतिहास के लक्ष्य की पूर्व कल्पना में एक परलोकशास्त्री अवधारणा है जो इतिहासकार की अपेक्षा धर्मशास्त्री के लिए उपयुक्त है तथा इसमें इतिहास के लक्ष्य को इतिहास के बाहर ढूंढने की भ्रांति निहित है। यदि इतिहासकार को प्रगति की अपनी अवधारणा की रक्षा करनी है तो उसे इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए जिसमें अनुवर्ती युगों की आवश्यकताएं तथा परिस्थितियां अपनी विशिष्ट वस्तु सामग्री रखेगी। इतिहास की वस्तु सामग्री की सिद्धि इसका अनुभव करने पर ही हो सकती है। इतिहास में विकास अनवरत रेखीय क्रम में नहीं होता। इतिहास की एक अवस्था में किसी वर्ग विशेष की एक विशिष्ट भूमिका हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि सभ्यता के विकास की अगली अवस्था में भी इसी वर्ग की प्रमुख भूमिका हो। इसका स्थानांतरण दूसरे वर्ग को हो सकता है। प्रगति सभी के लिए समान एवं समकालिक प्रगति नहीं हो सकती। इतिहास की यह पूर्व धारणा है कि मनुष्य में अपने पूर्वजों के अनुभव से लाभ उठा सकने की योग्यता है तथा यह कि प्रकृति में दृष्ट विकास के विपरीत इतिहास में प्रगति अधिगत उपलब्धियों के संक्रमण पर निर्भर है। इन उपलब्धियों में भौतिक उपलब्धियां तथा अपने परिवेश के नियंत्रण, रूपांतरण, उसके प्रयोग की क्षमता दोनों ही सम्मिलित है। वस्तुतः दोनों परस्पर संबद्ध है। प्रगति में आस्था का अर्थ किसी स्वतः नियंत्रित एवं अवश्यंभावी प्रक्रिया में आस्था नहीं अपितु मानव क्षमताओं के प्रगतिशील विकास में आस्था है। प्रगति एक अमूर्त शब्द है तथा समय समय पर मनुष्य जिन मूर्त लक्ष्यों का अनुशीलन करता है वे इतिहास से उद्भूत होते हैं, इतिहास के बाहर से नहीं। मैं मनुष्य की पूर्णियता में अथवा पृथ्वी पर किसी भावी स्वर्ग में विश्वास नहीं करता और इस सीमा तक मेरा धर्मशास्त्री से मतैक है कि पूर्णियता इतिहास में नहीं है। मैं कतिपय लक्ष्यों की दिशा में जिनकी परिभाषा उनकी ओर बढ़ते हुए ही की जा सकती है तथा जिसकी प्रामाणिकता का परीक्षण उनकी प्राप्ति की प्रक्रिया में ही संभव है, अनंत प्रगति की संभावना से संतुष्ट हो जाऊंगा। साथ ही प्रगति की इस प्रकार की अवधारणा के अभाव में कोई समाज जीवित नहीं रह सकता। प्रत्येक सब समाज आने वाली पीढ़ी के लिए वर्तमान पीढ़ी पर कुछ त्याग आरोपित करता है। जैसा कि ब्यूरी ने कहा है, भावी संतति के लिए कर्तव्य का सिद्धांत प्रगति की अवधारणा का सहज परिणाम है। संभवतः यह कर्तव्य किसी औचित्य की अपेक्षा नहीं करता। यदि करता है तो मैं इसके औचित्य स्थापन का कोई अन्य उपाय नहीं जानता। इतिहास में निर्वैयक्तिकता का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज विज्ञान और इसमें इतिहास भी सम्मिलित है में विषय तथा वस्तु में पृथकत्व नहीं किया जा सकता। यहाँ दृष्टा तथा दृष्ट में कोई विभेद नहीं है। इतिहास के तथ्य पूर्णतया वस्तुनिष्ठात्मक तथा निर्वैयक्तिक नहीं हो सकते क्योंकि वे इतिहासकार द्वारा महत्व प्रदान किए जाने के फलस्वरूप ही तथ्य बनते हैं। इतिहास में निर्वैयक्तिकता, यदि हम इसी रूढ़ शब्द का ही प्रयोग करना चाहते हैं, तथ्य की निर्वैयक्तिकता न होकर तथ्य तथा व्याख्या के बीच स्थित, अतीत वर्तमान तथा भविष्य के बीच स्थित संबंध की निर्वैयक्तिकता है। पूर्ण सत्य की अवधारणा इतिहास के जगत में समीचीन नहीं है, संभवतः विज्ञान के जगत में भी नहीं। जब कोई इतिहासकार अपने किसी पूर्ववर्ती के निष्कर्ष का प्रत्याख्यान करता है, वह उसे पूर्णतया मिथ्या न मानकर अनुपयुक्त, एक पक्षीय अथवा भ्रांतिपूर्ण अथवा ऐसे दृष्टिकोण का परिणाम मानेगा जो बाद के साक्ष्यों के संदर्भ में गत मूल्य अथवा अप्रासंगिक हो गया है। यह कहना कि रूसी क्रांति का जन्म निकोलस द्वितीय की मूर्खता अथवा लेनिन की प्रतिभा के कारण हुआ सर्वथा अनुपयुक्त है। इतना अनुपयुक्त कि इससे भ्रांति होती है, किंतु इसे पूर्णतया मिथ्या नहीं कहा जा सकता। इतिहासकार इस प्रकार के किसी परम मापदंड में विश्वास नहीं रखता। फिर इसका क्या अर्थ है जब हम किसी इतिहासकार की निर्वैयक्तिकता अथवा निष्पक्षता की प्रशंसा करते हैं अथवा किसी एक इतिहासकार को दूसरे की अपेक्षा अधिक निर्वैयक्तिक कहते हैं? मेरे विचार से इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो यह कि उसके अंदर समाज में तथा इतिहास में उसकी स्थिति की सीमित दृष्टि से ऊपर उठने की क्षमता है। दूसरा यह कि उसमें भविष्य के प्रति अपने दृष्टिकोण को इस प्रकार निरूपित करने की क्षमता है कि अतीत का उसे सम्यक अवबोध हो सके। निर्व्यक्तिक इतिहासकार वह है जिसमें अतीत तथा भविष्य दोनों के प्रति एक दूरदर्शी दृष्टि है। जब मैंने इतिहास को अतीत तथा वर्तमान के बीच चलने वाला परिसंवाद कहा, तो मुझे इसे वस्तुतः अतीत की घटनाओं तथा प्रगतिशील रूप में उत्पन्न होने वाले भावी लक्ष्यों के बीच स्थित परिसंवाद कहना चाहिए था। इतिहासकार की अतीत की व्याख्या महत्वपूर्ण तथा प्रासंगिक का उसका चयन नए लक्ष्यों के क्रमिक उद्भव के साथ विकसित होता है। इसे एक दृष्टांत से समझा जा सकता है। जब हमारे सामने संवैधानिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक अधिकारों का लक्ष्य था, इतिहासकार अतीत की व्याख्या संवैधानिक तथा राजनीतिक संदर्भ में करता था। अब संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकारों के स्थान पर आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यों के प्रतिष्ठित होने पर इतिहासकार अतीत की आर्थिक तथा सामाजिक व्याख्या की ओर उन्मुख दिखाई पड़ता है। इस नई व्याख्या द्वारा पूर्व व्याख्या का पूर्ण तिरस्कार नहीं मानना चाहिए, अपितु यह इसमें सम्मिलित है तथा नई का इसके ऊपर प्रतिष्ठापन है। इतिहास लेखन इस अर्थ में एक प्रगतिशील विज्ञान है कि यह घटनाओं के परिवर्तन क्रम में, जो कि स्वयं प्रगतिशील है, निरंतर विकासशील एवं गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास करता है। किसी के लिए इतिहास के भविष्य में अथवा समाज के भविष्य में विश्वास करने की बाध्यता नहीं है। यह संभव है हमारा समाज विनष्ट हो जाए अथवा क्रमिक विनाश को प्राप्त हो तथा इतिहास दैवी उद्देश्य का अध्ययन करने वाले धर्मशास्त्र मात्र अथवा उद्देश्य विहीन कथाएं कहने वाला साहित्य बनकर रह जाए, किंतु तब वह इस अर्थ में इतिहास नहीं रह जाएगा जिस रूप में हम इसे पिछले 200 वर्षों में समझते आए हैं। इतिहासकार तथ्य तथा मूल्य को अलग नहीं कर सकता। यह संभव है कि एक अपरिवर्तनशील जगत में तथ्य तथा मूल्य का विभेद घोषित किया जा सके, किंतु अपरिवर्तनशील जगत में इतिहास का कोई अर्थ ही नहीं रहता। इतिहास का सार परिवर्तन है, गति है, अथवा यदि हम किसी पुरानी शब्दावली के प्रयोग से अरुचि रखते हैं तो प्रगति है। इतिहास तब से प्रारंभ होता है जब से मनुष्य समय क्रम को प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में समझना छोड़कर विशिष्ट घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में समझने लगा, जिनसे मनुष्य चैतन्य रूप में संबद्ध है तथा जिन्हें वह प्रभावित कर सकता है। इतिहास मनुष्य का अपने विवेक के प्रयोग द्वारा अपने परिवेश को समझने तथा उसका परिष्कार करने की दिशा में दीर्घकालिक संघर्ष है, किंतु आधुनिक युग में क्रांतिकारी रूप में इस संघर्ष को विस्तारित कर दिया है। मनुष्य अब केवल अपने परिवेश को समझने तथा उसमें परिष्कार करने का ही प्रयास नहीं करता, अपितु वह स्वयं को ही समझने तथा परिष्कृत करने का प्रयास करता है, और इस बात ने विवेक में तथा इतिहास में एक नया आयाम जोड़ दिया है। वह अतीत की ओर इस आशा से देखता है कि इससे भविष्य की रहस्यमयता को हटाने के लिए कुछ प्रकाश मिल सकेगा, साथ ही भविष्य के प्रति उसकी आकांक्षाएं एवं चिंताएं उसके अतीत के ज्ञान को स्पष्ट करेंगी। अतीत, वर्तमान तथा भविष्य इतिहास की अनंत श्रृंखला में परस्पर घनिष्ठ रूपेण संबद्ध है। ई एच कार की पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास सिद्धांत की प्रमुखतम पाठ्य पुस्तकों में है। जब से रांके ने इतिहास का उपयुक्त उद्देश्य घटनाओं का यथातथ निरूपण बताया, इतिहास लेखन में निर्वैयक्तिकता का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने लगा है। किंतु स्वयं तथ्यों का अस्तित्व कैसे बनता है? कार ने अपनी पुस्तक में यह तर्क दिया है कि इतिहास में तथ्यों का कोई इतिहासकार से सर्वथा विलग अस्तित्व नहीं होता। इतिहासकार ही अपने चयन कर्म द्वारा तथ्यों का प्रतिष्ठापन करता है। असंख्य लोगों ने रूबिकॉन को पार किया होगा, किंतु यह इतिहासकारों द्वारा ही ज्ञात होता है कि केवल इसका सीजर द्वारा पार किया जाना ही महत्वपूर्ण था। सभी ऐतिहासिक तथ्य हमें अपने युग के प्रतिमानों द्वारा प्रभावित इतिहासकारों के व्याख्यात्मक विकल्पों के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होते हैं। किंतु यद्यपि इतिहास में नितांत निर्वैयक्तिकता संभव नहीं है, तथापि इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि इतिहास का कोई प्रयोजन अथवा आकर्षण नहीं है। वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच स्थित अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है। क्या इतिहास में कोई प्रयोजन निहित है? कार ने फिशर की कड़ी आलोचना की है, जिसने एक वाक में यह कहा कि उसे इसमें कोई प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता। उसने विशुद्ध संयोग के सिद्धांत की भर्त्सना की है। इस सीमा तक कार के मत के प्रति किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु इतिहास में संयोग भी होते हैं। वस्तुतः इतिहासकार को संयोग से अभिभूत न होकर उनकी व्याख्या का प्रयास करना चाहिए। कोई भी इतिहासकार, जिसमें फिशर भी सम्मिलित है, अपने विषय को सर्वथा अर्थविहीन नहीं मानता। यदि वह मानता होता तो वह इसे लिखने का व्यर्थ उपक्रम ही नहीं करता। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इतिहास में कोई दूरगामी परियोजना है? क्या वस्तुएं ऐसे परिणाम प्रदान करती हैं जिनमें निरंतरता है तथा जिनके प्रति भविष्यवाणी की जा सकती है? वस्तुतः जब कार तथा अन्य इतिहास में प्रयोजन ढूंढते हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य इतिहास में से ईश्वर के हट जाने से उत्पन्न रिक्तता की पूर्ति है। इतिहास में भविष्यवाणी की संभावना मानने के दो उपाय हैं, चक्रात्मक तथा रेखीय। पहले की यह मानता है कि समाजों का उद्भव तथा पतन होता है तथा अन्य सभ्यताएँ इनमें स्थान पर आती है और उनमें भी उसी प्रतिमान का अनुसरण होता है। दूसरे मत के अनुसार अतीत की समष्टि प्रगति की एक सीधी रेखा में परिवर्तित हो रही है। कार इस दूसरे मत में विश्वास करते हैं। इतिहास का अर्थ पार्ट 2। हीगल से लेकर कार तक कई विद्वानों ने इतिहास में उद्धार ढूंढने का प्रयास किया है, किंतु राइनहोल्ड नेबूर जैसे धर्मशास्त्रियों ने इसका विरोध किया है तथा यह तर्क किया है कि इतिहास इस प्रकार की कोई प्रतिश्रुति नहीं देता। यह अभिज्ञान होते ही कि इतिहास का कार्य व्यापार अतीत के साथ है, भविष्य के साथ नहीं, इस तथ्य को समझना और सरल होगा। अतएव अंतिम निर्णय की संभावना इतिहास के अंतर्गत नहीं, अपितु इतिहास की समाप्ति होने पर ही संक्षिप्तया इतिहास की प्रहेलिका का समाधान इतिहास द्वारा नहीं हो सकता। जीवन के इतिहास से परे स्थित व्याख्या द्वारा ही यह संभव होगा तथा परंपरागत धर्म द्वारा हमें एक ऐसी व्याख्या पहले से ही उपलब्ध है। इतिहास की अवधारणा प्रगति की अवधारणा से जन्मी है, जैसा कि हम पहले अध्याय में देख चुके हैं, किंतु इस प्रस्थापना को उलट कर नहीं रखा जा सकता। इतिहास द्वारा प्रगति का विश्वास नहीं प्रदान किया जाता। टाइनवी धर्मशास्त्री नहीं थे, इसके विपरीत ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर उसका निष्कर्ष यह है कि यदि हम अपने ढंग नहीं बदलते तो अन्य पूर्ववर्ती सभ्यताओं के समान हमारी सभ्यता का विनाश अवश्य संभावी है। किंतु आत्म उद्धार के लिए हम किस सिद्धांत से नियंत्रित हों? यहाँ टाइनवी इतिहास विषयक अवधारणा मुख्यतः हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं से, जैसे कि मार्क्स का विचार है कि यह हमारी भौतिक आवश्यकताओं से नियंत्रित होता है, अपने वैज्ञानिक उपकरण के प्रदर्शन तथा परीक्षा सिद्ध नैपुण्य के बावजूद टाइनवी अपने अनुसंधान में मूलतः धार्मिक मूल्यों की पूर्व सिद्धि वचनबद्धता से नियंत्रित हैं। पीटर गेल ने टाइनवी के विरुद्ध आरोप करते हुए कहा कि टाइनवी जो स्वयं को इतिहास का विद्यार्थी कहता है वस्तुतः इतिहासकार नहीं है, वह एक धर्मदूत है। अतीत का अध्ययन हमें भविष्य के प्रति भविष्यवाणी की अनुमति नहीं प्रदान करता, अधिक से अधिक हमें इसकी कल्पना करने की अनुमति दे सकता है। पीटर गेल का लेख टैनबी की प्रस्थापना की आलोचना है, किंतु इस प्रक्रिया में वह अपनी इतिहास विषयक अवधारणा को भी स्पष्ट करता है। उसके अनुसार इतिहास विज्ञान से अधिक निश्चितता नहीं प्रदान करता। इतिहास की गति से हमें किसी सांत्वनात्मक अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। पीटर गेल के लिए इतिहास किसी लक्ष्य की और उद्दिष्ट द्वंद्वात्मक प्रक्रिया नहीं है, अपितु अतीत तथा वर्तमान के बीच कभी न समाप्त होने वाला परिसंवाद है, जिसमें वर्तमान अंततः अतीत की अपेक्षा स्वयं के विषय में अधिक जान सकता है तथा जिसमें इतिहास की शिक्षाओं को कभी भी भविष्य के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है। श्रद्धा तथा इतिहास, राइनहोल्ड नेबूर। बार्थोल्ड जॉर्ज नेबूर 1776 से 1831 प्रारंभ में पेशेवर इतिहासकार नहीं था। बार्थोल्ड जॉर्ज नेबूर प्रारंभ में पेशेवर इतिहासकार नहीं था। वह प्रसिद्ध भ्रमणार्थी कॉन्स्टेन नेबूर का पुत्र था। अपने पिता तथा रोमांटिक लेखकों के प्रभाव में इतिहास की ओर उसकी अभिरुचि अत्यंत प्रारंभ से ही हो गई थी और 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व उसने 20 भाषाएं सीख ली थी। उसने अपना जीवन यापन डेनमार्क की प्रशासनिक सेवा से प्रारंभ किया और 1806 में प्रसा की प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुआ। प्रसा के सुधार आंदोलन का वह एक महत्वपूर्ण सदस्य बना एवं 1810 में शीघ्र ही स्थापित बर्लिन विश्वविद्यालय में वह प्राध्यापक नियुक्त हुआ। अपने अंतिम दिन उसने बोन विश्वविद्यालय में व्यतीत किए। वह एक असाधारण व्यक्ति था। नेबूर का रोम का इतिहास (2 जिल्दों में 1811 से 1812 (बंद) रोमन साम्राज्य की उत्पत्ति के पुनर्निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास था। पूर्ववर्ती इतिहासकारों द्वारा केवल रोमन साम्राज्य की विजयों के लेखन का प्रयास किया गया था। नेबूर ने प्राचीन इतिहास के अध्ययन में भाषा शास्त्री की समीक्षात्मक विधा का प्रयोग किया। एक राजनीतिज्ञ के रूप में उसे राजनीतिक संस्थाओं का निकट से ज्ञान था और उसके ऐतिहासिक लेखन में इन राजनीतिक संस्थाओं के ऊपर तथा रोमन विधि एवं सापत्तिक संबंधों के ऊपर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। ऐतिहासिक महान कृतियों में सर्वाधिक अपठनीय कही जाने पर भी उसकी कृति रांके, मिखेले तथा मामजन जैसे इतिहासकारों के लिए प्रतिमान के रूप में ग्रहण की गई। आधुनिक युग में प्रायः सभी प्रकार के मनुष्यों में यह विश्वास समान रूपेण प्रचलित रहा है कि इतिहास विकास का एक विमुक्तिकारी प्रयास है, प्रक्रिया है। वह शोध आधुनिक ऐतिहासिक विज्ञान की प्रमुख उपलब्धि थी कि मानवीय संस्कृति अनंत विकास का विषय है। वर्तमान युगीन संस्कृति में तर्कशीलता में उतना विश्वास नहीं है जितनी कि इतिहास में श्रद्धा है तथा इस अवधारणा ने विविध प्रकार के चिंतकों के चिंतन में स्थान पाया है। लाबनीज, कांट, हीगल, मील, कुंत, हर्बर्ट स्पेंसर सभी ने एक अथवा दूसरे रूप में ऐतिहासिक आशावादिता में विश्वास का प्रदर्शन किया है। मार्क्स भी इसका अपवाद नहीं है। इस प्रकार इस अवधारणा ने आधुनिक संस्कृति को एक अभूतपूर्व एकात्मकता प्रदान की है। इतिहास की उपकल्पनात्मक लक्ष्य को बहुविध परिभाषित किया गया। 19वीं शताब्दी में ऐतिहासिक आशावादिता के सर्वाधिक स्थूल प्रकार की मान्यता के अनुसार वृद्धिशील भौतिक सुख तथा सुविधा में विकास के अन्य सभी प्रकार सुरक्षित थे। कभी कभी विस्तारशील मानव समुदाय को अनिवार्यतः एक सार्वभौम समुदाय में रूपांतरित होते हुए उपकल्पित किया गया। कुछ ने जैसा कि एचजी वेल्स की इतिहास की रूपरेखा में दिखाई पड़ता है ऐतिहासिक प्रक्रिया को मानव समुदाय के प्रजातंत्रीकरण तथा सार्वभौमीकरण की ओर विकासोन्मुख माना। यद्यपि प्रजातंत्र की परिणति को विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया, इसी प्रकार ऐतिहासिक विकास के कारण के प्रश्न पर भी सहमति का अभाव था। सामाजिक डार्विनवाद प्रकृतिवाद के प्रकारों में ऐतिहासिक विकास को प्राकृतिक विकासवाद के विस्तरण मात्र के रूप में देखा गया। डार्विन के अनुयायियों ने प्रगति की प्रत्याभूति को योग्यतम की अतिजीविता में देखा, अन्यों ने प्रकृति तथा इतिहास दोनों में ही एक ऐसी गति का दर्शन किया जो दृढ़ अहंकारवाद से दूसरों के हितों के प्रति अधिकाधिक विचार की ओर अग्रसर हो रही है। प्रायः ऐतिहासिक विकास को प्रकृति में क्रियाशील शक्तियों के विस्तरण के रूप में उतना नहीं देखा गया जितना कि मस्तिष्क के विकास द्वारा नैसर्गिक मनोवेग के निरोध के रूप में। इस प्रकार छोटी मोटी असमानताओं को छोड़कर आधुनिक संस्कृति का मुख्य स्वर भविष्य के प्रति आशावादिता का था। भविष्य में मनुष्य का उद्धार निश्चित माना गया है, वस्तुतः भविष्य के द्वारा यह विश्वास दिलाया गया। पूर्ववर्ती शताब्दियों के विविध अनुभव इस प्रकार की अनियंत्रित आशावादिता को चुनौती दे सकते थे, किंतु प्रकृति के ऊपर मनुष्य के नियंत्रण की गति इतनी तीव्र थी सभी संदेह मौन बना दिए गए एवं 19वीं शताब्दी को आशा की शताब्दी होने की आशा की गई। फिर यही आशा 20वीं शताब्दी के लिए प्रकट की गई, किंतु 1914 के उपरांत हमें एक के बाद एक ऐसे कटु अनुभव मिलते जा रहे हैं मानो इतिहास आधुनिक मनुष्य की व्यर्थ भ्रांतियों के प्रत्याख्यान के लिए ही बनाया गया है। ऐतिहासिक विकास के नियम तथा प्रवृत्तियां आशा से अधिक जटिल सिद्ध हुई। प्रत्येक नई स्वतंत्रता द्वारा एक नए आश्वासन के साथ एक नए संकट का भी प्रतिनिधित्व हुआ। आधुनिक औद्योगिक समाज ने राजनैतिक निरंकुशता के प्राचीन प्रकारों को विनष्ट किया तथा भूमिगत सांपत्तिक असमानताओं को दूर किया, किंतु यांत्रिक समाज ने नए प्रकार की असमानताओं को जन्म दिया। संप्रेषण तथा आवागमन के उपकरणों में हुए विकास से देश काल की दूरी समाप्त हो गई तथा एक विश्व समुदाय के उदय की आशाएं बढ़ी, किंतु इससे विभिन्न देशों में एक विश्व संघ का निर्माण न हो सका, अपितु पारस्परिक संघर्ष सतह पर आ गए और एक ही पीढ़ी को दो विश्वव्यापी भयानक युद्धों की विभीषिका से गुजरना पड़ा। इस प्रकार जिस शताब्दी में विश्वव्यापी प्रजातंत्रीय समाज की स्थापना की आशा की जाती थी, वह इस प्रकार के भयानक युद्ध से बचने की संभावना के प्रति ही निश्चित मना नहीं है एवं मानव समाज अथवा कम से कम सभ्यता का बच सकना ही संदेह का विषय हो गया। मनुष्य की इतिहास विषयक अवधारणा का समसामयिक इतिहास द्वारा यह प्रत्याख्यान हमारे युग के आध्यात्मिक संकट को स्पष्ट करता है। आधुनिक अनुभव त्रासदी की अपेक्षा कारुण्य अथवा विडंबना की कोटि में आता है, क्योंकि समसामयिक संस्कृति के पास श्रद्धा का कोई सुविधाजनक बिंदु नहीं है जहां से वह आधुनिक मनुष्य की दुखद अवस्था को समझ सके। आने वाली शताब्दियां इसमें इस प्रकार का कारुण्य पा सकती हैं जैसा कि हार्डी के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस नाटक का पात्र एक दर्गीय नियति में फंसे हुए हैं जो या तो उन्हें नैराश्य की ओर ढकेलती है अथवा जिसके लिए ये मिथ्या व्याख्याएं प्राप्त करते हैं। मनुष्य की इस समसामयिक संकटावस्था के विविध स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, किंतु ये सभी व्याख्या के उन्हीं सिद्धांतों से उद्भूत हैं जिनके कारण आधुनिक मनुष्य उन अनुभवों की कल्पना नहीं कर सका था जिन्हें कि वह अब समझने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोगों द्वारा यह आशा दिखाई जाती है कि मानव समाज अनवरत रूप में सुख तथा पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होता और इस प्रकार एक कुंडलित विकास की अवधारणा से संतावना की प्राप्ति की जाती है। कुछ अन्य लोग इस संतावना को इतिहास के एक दीर्घकालिक अवलोकन द्वारा प्राप्त कराने का प्रयास करते हुए यह आग्रह करते हैं कि अज्ञात पूर्वैतिहासिक असभ्यता के लंबे समय की अपेक्षा सभ्यता का अज्ञात समय बहुत छोटा है। हमारी वर्तमान कष्टावस्था सभ्यता के बाल्यकाल से संबद्ध है, जो भविष्य में स्थित पूर्णता की प्राप्ति पर शीघ्र ही विस्तृत हो जाएगी। आधुनिक संकटों को बड़ी लोकप्रिय व्याख्या सांस्कृतिक पिछड़ेपन को इसका कारण मानती है, जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य का सामाजिक ज्ञान यांत्रिक प्रगतियों के साथ नहीं चल पा रहा है। विशिष्ट बुराइयों की व्याख्या के रूप में यह स्पष्टीकरण सत्य है, किंतु इसमें कुछ भ्रांतियां निहित हैं। सांस्कृतिक पिछड़ेपन के सिद्धांत का प्रमुख दोष इस आधुनिक प्रस्थापना में निहित है। इस सांस्कृतिक पिछड़ेपन का कारण सामाजिक विज्ञानों द्वारा प्राकृतिक विज्ञानों में प्राप्त निर्व्यक्तिकता तथा निष्पक्षता की प्राप्ति में शिथिलता है। इस विश्वास में यह दोषमय धारणा अंतर्निहित है कि मनुष्य का प्रकृति विषयक ज्ञान तथा उस पर विजय, मानव स्वभाव के अवबोध तथा उस पर विजय के लिए अपेक्षित बुद्धि तथा तकनीक को भी विकसित करती है। यह सच है कि मनुष्य स्वभाव तथा विभिन्न प्रदत्त सामाजिक परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिक ज्ञान मानव आधार के पुनर्नियोजन में पर्याप्त सहायक हो सकता है, किंतु अंततः मानव आचार तथा सामाजिक संबंधों की समस्याएं भौतिक स्वरूप के संबंधों की समस्याओं से भिन्न कोटि में आती हैं। मित्र अथवा शत्रु की निष्पक्ष रूपेण पहचान सकने की क्षमता मूलतः एक नैतिक उपलब्धि है, भौतिक उपलब्धि नहीं, क्योंकि इसमें भयों एवं पूर्वाग्रहों, द्वेष तथा घृणा, जो केवल मन की नहीं अपितु संपूर्ण व्यक्तित्व की दोषमयता का प्रतिनिधित्व करते हैं, के समन की अपेक्षा होती है। जनहित के लिए त्याग भावना, सामाजिक न्याय के लिए विशेषाधिकारों का परिहार, क्षमा द्वारा संघर्षशील वर्गों को समीप लाना, ये सब एक सामाजिक बुद्धि के परिणाम होते हैं, जिसमें विज्ञान का केवल सहायक योगदान होता है। इस प्रकार की बुद्धि में मनुष्य का समष्टिगत व्यक्तित्व सन्निविष्ट होता है। यह विश्वास कि वैज्ञानिक निर्व्यक्तिकता का प्राकृतिक जगत से ऐतिहासिक जगत में विस्तरण हो सकता है, इतिहास में जीव की कर्ता के रूप में तथा कर्म के विषय के रूप में एकात्मकता को ढक देता है। जीव इतिहास का प्राणी है, किंतु वह इतिहास का निर्माता भी है। यह विश्वास, जिसकी प्रेरणा का स्रोत भौतिक विज्ञानों की महान उपलब्धियां हैं, कि जिन विधाओं से मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है, उन्हीं के द्वारा मानव व्यवहार की सभी उपेक्षक वस्तुओं को मस्तिष्क के सर्वव्यापी उद्देश्यों के अंतर्गत किया जा सकता है, वस्तुतः भ्रांति पूर्ण है। स्वयं के गलत अवबोध से मनुष्य का यह महानतम दोष है। सभ्यताएं उदित होती हैं और उनका विनाश होता है, किंतु इससे इन सभ्यताओं एवं संस्कृतियों में प्रकाशित नित्य मूल्यों का निराश नहीं होता। प्रत्येक सभ्यता जो अपने दोषों के कारण विनष्ट होती हैं, में कुछ वांछनीय तत्व भी रहते हैं। समय प्रवाह में शाश्वत मूल्यों के कुछ पक्ष भी सदैव वर्तमान होते हैं। यदि ऐसा है तो यह प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं ऐतिहासिक प्रक्रिया इस प्रकार के शाश्वत मूल्यों को संग्रहित करती है एवं निरर्थक वस्तुओं को विनष्ट कर देती है। एक गुण दोष निरूपक प्रक्रिया में इतिहास क्यों नहीं मिथ्या वस्तुओं के भूसे को जलाकर सत्य रूपी अन्न का संचय करता। एक अर्थ में यह सत्य है, किंतु स्वयं अपना निर्णायक होने के रूप में इतिहास की यह अवधारणा अंततः भ्रांतिपूर्ण है। यह इस अर्थ में सत्य है कि इतिहास वस्तुतः मनुष्य की विकासशील स्वतंत्रता की कथा है, किंतु यह मानते ही कि इस वृद्धि उन्मुख स्वतंत्रता से किसी और व्यापक लक्ष्य की उपलब्धि की आशा की जा सकती है, यह सत्य भ्रांति में रूपांतरित हो जाता है। स्वतंत्रता से प्राप्त आशाओं के उदय होते ही इसके खतरे भी उत्पन्न होते हैं और ये आशाएं तथा खतरे घनिष्ठ रूपेण संयुक्त होते हैं। गेहूं तथा साई घास एक प्रकार का जंगली अखाद्य अन्न वाला पौधा के दृष्टांत में इतिहास की संभावनाओं के प्रति बाइबिल का दृष्टिकोण अत्यंत ठीक ठीक अभिव्यक्त होता है। गेहूं के साथ साथ वो दिए गए साई घास के उग जाने पर उनको उखाड़ने के लिए उद्यत नौकरों को रोक दिया जाता है, क्योंकि साई घास को उखाड़ते समय गेहूं भी उखड़ जाएंगे। दोनों के फसल को के कटने तक उगने दो। फसल तैयार होने पर मैं काटने वाले से कहूंगा कि साई घास को पहले काटकर उन्हें जला दो और फिर गेहूं को काटकर खलिहान में लगा दो। कहने का आशय यह है कि अंतिम निर्णय की संभावना इतिहास के अंदर नहीं, इतिहास की समाप्ति पर ही हो सकती है। प्रकृति के ऊपर मनुष्य की वृद्धोन्मुख स्वतंत्रता वृद्धिमान ऋतु के समान है, जो गेहूं तथा साई घास दोनों को तैयार करती है और ये दोनों परस्पर संबद्ध हैं। इस प्रकार यदि संक्षेप में कहा जाए, इतिहास की प्रहेलिका का समाधान इतिहास द्वारा नहीं होता है। इसमें अर्थ के ऐसे पहलू होते हैं जो समय प्रवाह से ऊपर होते हैं। बढ़ती हुई स्वतंत्रता की परिस्थितियों के अंतर्गत प्रेम के परिपक्व होने में भी एक निश्चित अर्थ है, किंतु उसी स्वतंत्रता द्वारा शक्ति तथा आत्म प्रेम की ध्वंसात्मकता की संभावना स्वयं इतिहास के अंतर्गत इतिहास के अर्थ के समाधान को असंभव बनाती है। श्रद्धा एक अंतिम निर्णय तथा अंतिम पुनर्जीवन की प्रतीक्षा करती है। इस प्रकार मनुष्य की यात्रा के अंत तथा प्रारंभ दोनों में एक रहस्यात्मकता है। इस रहस्यमयता का सूत्र ईसा मसीह के सहभोज में है। यह सृष्टि की रहस्यमयता का सूत्र है। इतिहास की दीर्घकालिक प्रक्रिया में अच्छाई तथा बुराई का विरोध घटने के स्थान पर बढ़ता जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में तत्कालिक अर्थ कुछ भी हो, अंततः यदि इसके अंत की पहलिका को वशीभूत करने वाली शक्ति तथा करुणा को नहीं समझा जाता तो इससे मनुष्य नैराश्य के गर्त में जा गिरेगा। मनुष्य का संपूर्ण इतिहास व्यक्ति के इतिहास के समान है। व्यक्ति अपने अस्तित्व के रहस्य को समझने की क्षमता नहीं रखता। वह अपनी स्वतंत्रता की वृद्धि करने का प्रयास करता है और स्वतंत्रता की वृद्धि से उसकी क्रियात्मकता बढ़ती है, किंतु इतिहास की बुराइयां तथा वृथाभिमान के कारण मनुष्य केवल अपनी शक्ति से अपने जीवन को पूर्ण बनाना तथा इसकी प्रहेलिका को अपनी बुद्धि से सुलझाना चाहता है। ईसाई श्रद्धा उस दैवी प्रेम तथा शक्ति का अवबोध है जो संपूर्ण मानवीय तीर्थयात्रा को धारण करती है। इसकी प्रहेलिकाओं एवं विरोधों में प्रकाशित होती है एवं अंततः तथा निश्चिततया उस नाटक में प्रकट होती है जिसमें दुखमय प्रेम पाप तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यह प्रकाशन सभी जटिलताओं का समाधान नहीं करता, किंतु उससे नैराश्य का विनाश होता है एवं यह आत्म प्रेम को प्रेम में रूपांतरित कर पुनः जीवन संचार करता है। विश्व तथा पश्चिम जगत आर्नोल्ड टाइनबी के अनुसार आर्नोल्ड टाइनबी ने हीगल के समान इतिहास को सार्वभौमिक इतिहास के रूप में देखा है, किंतु जहां हीगल का दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, टाइनबी ने अपने दृष्टिकोण को अनुभव सिद्ध तथा परीक्षा सिद्ध बताया है। उसकी प्रसिद्ध कृति इतिहास का अध्ययन स्टडी ऑफ हिस्ट्री का प्रकाशन 1934 में प्रारंभ हुआ तथा इसका संपूर्ण प्रकाशन 20 वर्षों में संपन्न हुआ। टाइनबी की इस कृति का मूल्यांकन विविध रूपों में हुआ है। उसके असहिष्णु आलोचक पीटर गेल को भी इसे विलक्षण विद्वता तथा प्रतिभा से संपन्न मानने को बाध्य होना पड़ा है, किंतु दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। तैनवी ने स्वयं अपनी कृति को परीक्षा सिद्ध अध्ययन पर आधारित कहा है। प्रारंभ में उसका प्रयोजन सभ्यताओं की उत्पत्ति विकास तथा पतन का तुलनात्मक अध्ययन प्रतीत होता है। उसने सभ्यता को ऐतिहासिक अध्ययन की एकमात्र बुद्धिगम इकाई माना तथा अतीत और वर्तमान की 21 सभ्यताओं का समीकार किया। इसके पश्चात उसने अनेक उनके इतिहासों में आवर्ती विशिष्टताओं को प्रतिस्थापित किया। यद्यपि तैनवी ने अपने समर्थन में प्रायः बहुसंख्यक साक्ष्यों को उद्धृत किया है, आलोचकों का विचार है कि इनके प्रयोग में उसका व्यवहार अपने गहरे पूर्वाग्रहों के कारण सर्वथा निष्पक्ष तथा तार्किक नहीं है। साथ ही विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों के विषय में उसकी व्याख्याओं को उस क्षेत्र के विशेषज्ञों का समर्थन नहीं प्राप्त होता। उसके समर्थक भी प्रायः उन्हें इतिहासकार कहने की अपेक्षा, जिसका तैनवी अपने लिए दावा करते हैं, कवि, धर्मदूत तथा अथवा रहस्यवादी कहना अधिक पसंद करते हैं। अंग्रेज इतिहासकार ट्रेवर रूपर ने तैनवी की पुस्तक की आलोचना करते हुए कहा है, मैं इसे न केवल त्रुटिपूर्ण अपितु घृणात्मक पाता हूँ। इनकाउंटर 8 संख्या 6 जून 1957 पृष्ठ संख्या 26। इस प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया पीटर गेल की इस अभिव्यक्ति में मिलती है कि यह पाश्चात्य सभ्यता के विरुद्ध एक निंदापूर्ण कृति है। तैनवी के अनुसार ऐतिहासिक अध्ययन की इकाई सभ्यता है। सृजनात्मक क्रियात्मक केवल उस परिस्थिति में पाई जाती है जिसमें कुछ कठिनाई के कारण लोगों में एक अभूतपूर्व प्रयास दिखाई पड़ता है। तैनवी ने सभ्यताओं की उत्पत्ति विषयक अपनी अवधारणा को एक सिद्धांत वाक्य में उपाहान तथा प्रत्युत्तर कहकर अभिव्यक्त किया है। इसके अनुसार सभ्यताओं के इतिहास में धर्म की विशिष्ट भूमिका होती है। सभ्यताओं के उदय तथा पतन में निरंतर, यद्यपि चैतन्यपूर्ण ढंग में नहीं, कुछ इंद्रियातीत प्रयोजनों की सिद्धि होती है। प्रारंभ में उसने सार्वभौमिक चर्च को वह कोष कीट माना जिसमें से सभ्यता का उद्भव होता है। आगे चलकर उसने भूमिकाओं के परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए यह मत अभिव्यक्त किया कि सभ्यता वह कोष कीट है जिसमें से इस प्रकार के सार्वभौमिक धर्म का उद्भव होता है। सभ्यता के विघटन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कष्ट तथा दुख के माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति प्रक्रिया में विकास करता है। तैनवी की भविष्य के प्रति आशा इस विश्वास में निहित प्रतीत होती है कि चार सार्वभौमिक धर्म जिसकी समानताओं की वह अतिशयोक्ति करता प्रतीत होता है, साथ साथ अथवा एक में मिश्रित होकर पृथ्वी पर स्वर्गीय संगीत उत्पन्न कर सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह एक प्रकार से पश्चिमी सभ्यता के विकास क्रम की निरर्थकता पर खेद सा प्रकट करता है। संप्रति दिए गए चयन में तैनवी के इसी मूल कथानक का विवरण वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास है समीक्षक है। पश्चिमी द्वारा पूर्वी देशों पर दो अवस्थाओं में प्रहार हुआ है। पहले तो पश्चिम ने प्रयास किया कि इन सुदूर पूर्वी देशों के लोगों पर पश्चिमी जीवन विधा को इसी संपूर्णता में, जिसमें विज्ञान एवं धर्म सभी सम्मिलित थे, आरोपित करना चाहिए, किंतु इनका यह प्रयोग असफल रहा। फिर उन्होंने पश्चिमी सभ्यता का धर्म निरपेक्ष रूप प्रस्तुत किया जिसमें केवल विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान तथा पश्चिमोत्तर देशों में यह ग्रहण किया गया। प्रायः मनुष्य प्रारंभ में विदेश की कुछ बातों को अनिच्छा से स्वीकार करता है, किंतु इस प्रक्रिया में उसे धीरे धीरे सब कुछ अपना लेने को बाध्य होना पड़ता है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि एक आक्रामक का विदेशी संस्कृति के प्रति समान दृष्टिकोण विरोध तथा शत्रुता का होता है। किसी विदेशी सभ्यता का ग्रहण एक दुखमय कार्य होता है तथा अपनी परंपरागत जीवन विधा के लिए संकट रूप नवीनताओं के प्रति स्वाभाविक विरोध से यह अनुभव और भी दुखमय बन जाता है। पश्चिमोत्तर देशों में कुछ राजनीतिज्ञों ने इसी दुर्लभ दूरदर्शिता का परिचय दिया कि कोई भी समाज जो अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी संस्कृति के प्रभाव का विषय है, उसे या तो इस विदेशी जीवन विधा को संपूर्णतः सीख लेना चाहिए अथवा इसे विनष्ट हो जाना होगा। पीटर महान, महमूद द्वितीय, महमूद अली मुस्तफा कमाल इसी प्रकार के व्यक्तित्व थे। विदेशी आक्रमण की चुनौती को इस रूप में स्वीकार कर लेना महान राजनीतिज्ञता का परिचायक है, क्योंकि यह सहज प्रवृत्तियों पर विजय है। सहज प्रतिक्रिया सामान्यतया कच्छप के समान, अपने सिर को अंदर कर लेने के समान नकारात्मक प्रकार की होती है, किंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा विदेशी जीवन विधा को संपूर्णतया अपना लेने का कार्य परंपरा प्रेमी लोगों में भ्रम उत्पन्न कर सकता है। क्या इस प्रकार के लोग किले की सुरक्षा को अत्यधिक मजबूत करने के प्रयास में किले को ही नहीं बेच दे रहे हैं? रूस में एक वर्ग द्वारा इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। मुस्लिम जगत में बहावियों, सुन्नीसियों, इद्रिसियों एवं महदियों द्वारा इसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी व्यक्त की गई, जिन्होंने उपरोक्त प्रकार के लोगों पर इस्लाम के विरुद्ध जाने का आरोप लगाया। किंतु विदेशी प्रभाव की चुनौती का सामना करने में विदेशी विधा को संपूर्णतः अपना लेने अथवा परंपरागत विधा को सुरक्षित रखने में से कोई भी समाधान नहीं है। इस अंतिम समाधान को हमें शेष विश्व का पश्चिम के साथ संबंध की कथा के अगले अध्याय में ढूंढना चाहिए, जो भविष्य में छिपा हुआ है। इस अनुपलब्ध अध्याय की पूर्ति हम अतीत में विश्व का यूनानियों तथा रोमनों के साथ समागम के आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि इस घटना के लेखन में पहले ही इतिहास पत्रिका प्रारंभ से लेकर अंत तक खुली हुई है, जिससे इस प्राचीन पुस्तक का संपूर्ण परीक्षण के लिए खुला हुआ है। इस यूनानी रोमन अतीत में संभवतः हमारे विश्व को पढ़ा जा सकता है। यह देखा जाए कि इस यूनानी रोमन लेख का क्या उपयोग हो सकता है। यहाँ मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि यूनानी रोम इतिहास के पर्यवेक्षण से हम अपने भविष्य की जन्म पत्रिका खींच सकते हैं। इतिहास अनायास अपनी पुनरावृत्ति नहीं करता, तथा इस पर्यवेक्षण से अधिक यह हो सकता है कि हमें अपने नाटक की भावी घटनाओं के विषय में कई संभव विकल्प प्राप्त हो सके। हमारे दृष्टांत में कथानक यूनानी रोमन निष्कर्ष के विपरीत प्रवर्तित हो सकता है। वस्तुतः भविष्य में देखना अंधकार में देखना है, एवं आगे के मार्ग को देखने के लिए हमें बड़ी सावधानी बरतनी होगी, किंतु जो भी प्रकाश किरण उपलब्ध है उनका उपयोग न करना बड़ी मूर्खता होगी, तथा यूनानी रोमन इतिहास से प्राप्त प्रकाश किरण निश्चित रूपेण प्राप्त प्रकाश किरणों में सर्वाधिक प्रकाशकारी है। हम यूनानी रोमन इतिहास के पन्नों को उलटना प्रारंभ करें तथा ईसा के 150 वर्षों बाद यूनानी रोमन विश्व का जो चित्र प्राप्त होता है वहां रुके। इस विश्व का लगभग 200 वर्ष पूर्व के विश्व से तुलना करने पर हमें तुरंत दिखाई पड़ेगा कि इस अवधि में कितनी उन्नति हुई है। पूर्ववर्ती शताब्दी में यूनानी रोमन विश्व युद्धों, कलहों, हिंसात्मक घटनाओं से उतना ही भरपूर था जितना कि आज का पश्चिमी जगत, किंतु द्वितीय शताब्दी में गंगा से लेकर टाइन तक पूर्ण शांति प्रतिष्ठित दिखाई पड़ती है। ब्रिटेन से लेकर भारत तक जिस प्रदेश में यूनानी रोमन सभ्यता का प्रचार हुआ था, समस्त भू क्षेत्र केवल तीन बड़े साम्राज्यों में विभक्त है। भूमध्य सागर के तट के चतुर्दिक रोमन साम्राज्य, इराक तथा ईरान में पार्थियन साम्राज्य एवं मध्य एशिया, अफगानिस्तान एवं हिंदुस्तान में कुषाण साम्राज्य, इन सभी साम्राज्यों के निर्माता तथा शासक यूनानी नहीं हैं, किंतु वे सभी यूनानी जीवन विधा तथा संस्कृति के प्रेमी हैं। इन साम्राज्यों में इस भूक्षेत्र में शांति आई, सामाजिक जीवन स्थिर हुआ, जीवन अवधिक सुरक्षापूर्ण था, किंतु इसी कारण यह नीरस भी था। जनहितकारी योग तथा निरंकुश शासन तंत्रों ने अनजान में मानव हृदयों में एक आध्यात्मिक शून्यता उत्पन्न कर दी थी। इस शून्यता को कैसे भरा जाए? द्वितीय शताब्दी ईस्वी में यह यूनानी रोमन विश्व के सामने एक बड़ी गंभीर समस्या थी। यद्यपि शासनाधिकारी तथा दार्शनिक इस प्रश्न के प्रति सचेत नहीं थे, जनसामान्य ही इस प्रश्न के समाधान में तत्पर था और इसी के उपक्रम के परिणाम स्वरूप आधे दर्जन पूर्वात्य धर्मों का उद्भव हुआ। हम पाते हैं कि इन धर्मों ने नेतृत्व को यूनानी रोमन विश्व से छीन लिया है। यूनानी रोमन जगत की आक्रामकता की शक्ति चुक गई थी एवं प्रत्याक्रमण अपने जोर पर था। यूनानी रोमन जगत का प्रहार सामरिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वरूप का था, किंतु शेष जगत के प्रतिहार का स्वरूप धार्मिक था। इस समय संस्कृतियों के संघर्ष की थकान स्पष्ट थी और जनसामान्य द्वारा इन धर्मों के स्वीकरण का मार्ग प्रशस्त था। धार्मिक समाज सबके लिए खुला था और इससे मानव एकता की भावना जन्मी तथा संस्कृतियों के विभेद की भावना का विनाश हुआ। थके तथा बोझिल हृदय वाले यूनानी रोमन विश्व पर इन नए धर्मों का व्यापक प्रभाव पड़ा। यहाँ एक जिज्ञासा आवश्यक है कि यूनानी रोमन विश्व के उस प्रभावी अल्पसंख्यक वर्ग की अनुभूति क्या थी जिसने कि इस समस्त भूक्षेत्र को जीता एवं लूटा था और अब इसके ध्वंसावशेषों पर आत्मनियुक्ति प्रहरियों के समान विचार रहे थे। वस्तुतः उनमें भी वही आध्यात्मिक क्षुधा व्याप्त थी। वही आध्यात्मिक क्षुधा व्याप्त थी जिसने कि बहुसंख्यक वर्ग को पीड़ित कर रखा था, किंतु नए धर्म की गोली ऐसे लोगों को कड़वी न लगे इस उद्देश्य से नए धर्मों से अपने ऊपर यूनानी परिधान के विविध प्रकार धारण कर लिए थे। बौद्ध धर्म से लेकर ईसाई धर्म तक सभी ने अपने को यूनानी कला शैली में प्रस्तुत किया तथा ईसाई धर्म ने आगे भी अपने बौद्धिक स्वरूप को यूनानी दर्शन के ढंग में प्रस्तुत किया। यूनानी तथा रोमन के साथ इतर विश्व के संबंधों के इतिहास में यह अंतिम अध्याय था। शक्ति द्वारा विश्व पर यूनानियों तथा रोमन की प्रभुत्व स्थापना के पश्चात इस इतर विश्व ने उन्हें अपने धर्मों में धर्मांतरित करके अपना बंदी बना लिया। इन धर्मों ने विजेता तथा विजित, शासक तथा शासित, यूनानी तथा गैर यूनानी का विभेद किए बिना सभी को अपना संदेश दिया। शेष विश्व का पश्चिम के साथ संबंधों में क्या इसी प्रकार की कोई बात होने वाली है? हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि भविष्य को बता सकना कठिन है। हम केवल यह देख सकते हैं कि इतिहास को एक भिन्न कथानक में एक बार जो हो चुका है वह भी हमारे भविष्य के संदर्भ में विविध संभावनाओं में एक हो सकता है। इतिहासकारों के साथ परिसंवाद। पीटर गेल। डच इतिहासकार पीटर गेल की एक प्रमुख रचना नेपोलियन के पक्ष तथा विपक्ष में है। मूल से अंग्रेजी भाषा में नेपोलियन फॉर एंड अगेंस्ट शीर्षक से अनुदित है। इनमें उसने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि किसी भी समाज के स्वरूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्देशक उस समाज द्वारा किया गया इतिहास लेखन होता है, क्योंकि किसी भी अन्य मनुष्य के समान इतिहासकारों का विचार भी अपने समय तथा स्थान के परिवेश से प्रभावित होता है। उसकी दूसरी प्रमुख कृति डिबेट्स विद हिस्टोरियंस है, जिसके तीन अध्याय (5-8) टाइनबी की आलोचना पर है। टाइनबी के अध्ययन की समीक्षा ने गेल को टाइनबी विरोधी की उपाधि प्रदान की। टाइनबी की परीक्षा सिद्ध उपयुक्तता पर पर्याप्त विवाद रहा है। वस्तुतः किसी भी ऐतिहासिक विशेषज्ञ के लिए जिसके भी क्षेत्र में टाइनबी ने प्रवेश किया वह एक उपयुक्त लक्ष्य है। सभ्यता के उद्भव, विकास तथा पतन के विषय में उसका एक विशिष्ट सिद्धांत है और इस कारण प्रत्येक सभ्यता के विवेचन में वह यह प्रदर्शित करने को बाध्य है कि इसकी जीवन यात्रा उसके इस सिद्धांत के साथ संगत है, किंतु उसका विशद ज्ञान भी उसके द्वारा किए गए सामान्यीकरण के भार को सहन नहीं कर पाता। गेल ने यह दिखाने की चेष्टा की है टाइनबी के निष्कर्ष साक्ष्यों के निष्पक्ष अध्ययन पर आधारित न होकर इस प्रयास से नियंत्रित प्रतीत होते हैं कि वे उसके सिद्धांत से संगत हूँ। अपनी पुस्तक में गेल ने टायनबी की पुस्तक से ऐसे दृष्टांतों का उल्लेख किया है। वस्तुतः जब कोई योजना अथवा व्यवस्था पंथ अथवा बाद का स्वरूप ग्रहण कर लेती है तो इतिहास केवल इस योजना के समर्थन के उद्देश्य से बरित अथवा विकृत किए गए दृष्टांतों का संग्रह मात्र रह जाता है और इस प्रकार इतिहास का अध्ययन सर्वथा रुद्ध हो जाता है। यह खतरा उस समय और भी अधिक होता है जब यह योजना इतिहास के अध्ययन पर आधारित होने का दावा करती है। टायनबी का दावा इसी प्रकार का है एवं मार्क्सवादी विचारधारा भी मानव इतिहास तथा व्यवहार का एक सार्वभौमिक सिद्धांत प्रस्तुत करने का दावा करती है। वस्तुतः वैज्ञानिक तो किसी इस प्रकार की योजना में बंधे बिना काम कर नहीं सकता, क्योंकि वह सामान्यीकरण की कसौटी पर विशिष्ट घटनाओं की परख तथा मूल्यांकन करता है। किंतु इतिहासकार के लिए प्रत्येक विशिष्ट महत्वपूर्ण है और उसे किसी समान सिद्धांत में बंधकर काम करने वाला बताना उसके लिए गाली से कम नहीं है। गिल ने संप्रति दिए गए चयन में इन्हीं तथ्यों पर बल दिया है। इतिहास को इसकी संपूर्णता में सर्वेक्षण करने एवं इसके विकास में प्रवृत्तियों को खोजने का प्रयास का कार्य केवल प्रोफेसर टायनबी ने ही नहीं किया, उनके पूर्व सेंट ऑगस्टन, बोसुए कोंदर्से, हीगल, मार्स, बक्कल, वेल्स, स्पेंगलर ने भी यह प्रयास किया है। न हो टायनबी इस श्रृंखला के अंतिम व्यक्ति हैं। उनकी कृति का आशय विभिन्न सभ्यताओं का एक तुलनात्मक अध्ययन है, जिसके आधार पर इतिहास के विषय में समान अवधारणाएं बनाई जा सकें। उनके अनुसार इतिहास की वास्तविक इकाइयाँ राज न होकर सभ्यताएँ हैं। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री को पढ़ने पर मुझे ऐसा लगता है कि लेखक द्वारा विकसित बाद अर्थात सभ्यताओं के विकास के लिए उसने जिन नियमों को उत्तरदायी बताया है तथा उन नियमों को की जिस रूप में परिभाषा की है, वे तथ्यों वैज्ञानिक रूप में दृष्ट तथा परस्पर संबद्ध तथ्यों से समर्थित नहीं है। मेरी धारणा है कि ऐतिहासिक तथ्य के स्वरूप के विषय में टायनबी की अवधारणा के प्रति कई गंभीर आपत्तियां उठाई जा सकती है। टायनबी पेशेवर इतिहासकारों को पसंद नहीं करते एवं उनके समीक्षात्मक दृष्टिकोण तथा सदैव संकालु मन के प्रति अधीर दिखाई पड़ते हैं, किंतु मेरे विचार से इतिहासकार के लिए अपने विषय के नियमों तथा सीमाओं का भी ज्ञान तथा उपयोग आवश्यक है तथा उससे यह अपेक्षित है कि आकर्षक सामान्यीकरणों की अपेक्षा वह अपने अज्ञान तथा संदेह को प्रकट करना अधिक पसंद करे। मेरा यह आशय नहीं कि इतिहासकार तथ्यों से चिपका रहे, किंतु साथ ही उसे यह सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि विवरण में आधारहीन एवं अनावश्यक व्यक्तिगत का अनुप्रवेश न हो जाए। यह इतिहास का एक पवित्र कर्तव्य है तथा इसकी उपयोगिता की एक आवश्यक अपेक्षा है। टायनबी ने विभिन्न व्यक्तियों, प्रवृत्तियों, विचार विधाओं, सामाजिक परिस्थितियों, युद्धों तथा सभी देशों एवं सभी समयों की प्रथाओं के दृष्टांतों पर चर्चा की है, किंतु समीक्षात्मक बुद्धि से युक्त पाठक यह सोचने को विवश हो जाता है कि इनमें से प्रत्येक विवाद का विषय हो सकता है तथा इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे इनके द्वारा टायनबी के मत का समर्थन नहीं किया जा सकता। ये तथ्य नहीं है अपितु तथ्यों के सर्वथा व्यक्तिक निरूपण है, तथ्यों की व्याख्याएं हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहास के विशद संश्लेषण एक गंभीर दोष से ग्रस्त हैं। मनुष्य के जीवन के विविध आयाम हैं, विभिन्न प्रकार की जटिलताएं हैं, विविध पक्ष हैं और वस्तुतः इतिहास विषय का निर्माण इन्हीं से होता है। इन संश्लेषणों में इस बात को दृष्टि में नहीं रखा गया है। हुई जिंगा ने कहा है कि किसी सभ्यता की उत्कृष्टता का मापन संभव नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि सभ्यताओं का उच्च तथा हीन के रूप में निश्चित विभाजन संभव नहीं है। विकास की अवस्था तथा पुनः उसके पश्चात विघटन का युग इस रूप में टायनबी का ही एक सभ्यता के विभिन्न अनुक्रमिक अवस्थाओं का कठोर वर्गीकरण समझ से परे है। हम प्रायः स्वर्ण युग की अथवा पतन की अवस्था की चर्चा करते हैं। वस्तुतः जब हम किसी स्वर्ण युग के विषय में विस्तृत अध्ययन करते हैं तो उसमें ऐसे कई दोष तथा दुर्बलताएं दिखाई पड़ती हैं जो हमारी आधुनिक कमियों से कम नहीं हैं। दूसरी ओर पतनशील अवस्था में भी कुछ सुंदर तत्वों का दर्शन होता है, किंतु किसी एक के विरुद्ध में दूसरे का मूल्यांकन इतिहासकार कभी भी निश्चितता के साथ नहीं कर सकता। मैं यह नहीं कहना चाहता कि वर्तमान के लिए इतिहास का कोई मूल्य नहीं है। बकहार्ट के समान मेरा भी यह विश्वास है कि यद्यपि यह तात्कालिक अवसरों के लिए शिक्षाएं नहीं प्रदान करता, तथापि इसके अध्ययन में हम अधिक विवेकपूर्ण बनते हैं। हमसे मेरा तात्पर्य केवल पेशेवर इतिहासकारों से न होकर उस समुदाय से है जिसमें इतिहास का अध्ययन तथा लेखन निरंतर हो रहा है। मैं किसी भी सभ्य समाज के लिए ऐतिहासिक दृष्टि के अनिवार्य मूल्य में विश्वास करता हूँ, लेकिन हमें इतिहास से उस चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो यह हमें निश्चित रूपेण नहीं प्रदान कर सकता। मैं टाइनबी की कल्पना का प्रशंसक हूँ। उनके निष्कर्षों से सहमत न हो सकने पर भी मेरे अंदर उनके उत्साह की सराहना का भाव उत्पन्न होता है, किंतु वैज्ञानिक ऐतिहासिक गवेषक के रूप में नहीं। इसीलिए और भी कि यह एक ऐसे निष्कर्ष की ओर ले चलता है जो मुझे खतरनाक लगता है। टाइनबी हमारे सामने दो विकल्प रखते हैं, धर्मांतरण अथवा विनाश, और वे यह इस प्रकार कहते हैं मानो उन्हें इतिहास का समर्थन हो, किंतु स्वयं इतिहास का इस प्रकार का कोई असमंजस नहीं उपलक्षित करता। कोई रहस्यवादी चिंतक ही इसमें रहस्यात्मक मुक्ति का आश्वासन देखेगा। शेष लोगों के लिए यह किसी नैराश्य का संदेश नहीं देता। टाइनबी द्वारा प्रस्तुत वाद के राजनीतिक निहितार्थ स्पेंगलर द्वारा प्रस्तुत वाद के समान अप्रिय नहीं हो सकते, किंतु यह उससे कम तर्कशून्य तथा पूर्व सिद्ध भावी नहीं है। इसे मनोवैज्ञानिक विधा तथा प्रत्यक्षवादिता के परिधान में प्रस्तुत करते हुए वह न केवल मेरे अंदर निहित विषय ज्ञाता को उद्वेलित करता है अपितु इसके प्रतिपादन के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आज के युग की प्रथम आवश्यकता स्पष्ट चिंतन है। जब कोई व्यक्ति व्यापक तथा संवेगात्मक शक्ति से संपन्न अंतर्दृष्टि सिद्धांत मताग्रह को लेकर अथवा ऐसी अवस्था को लेकर जिसके कारण उसे इतिहास के विविध पक्षीय विकास को किसी एक ईश्वर प्रेरित सिद्धांत में बांधना होता है लिखना प्रारंभ करता है, तो वह व्यक्ति विश्वास तथा प्रखरता से विभूषित मनोरंजक तथा ध्यानाकर्षक सिद्धांतों से संपन्न कृति की रचना कर सकता है, किंतु वह इतिहास नहीं लिख सकता। इतिहास का अध्ययन इतिहास नहीं है। इतिहास के विद्यार्थियों को, जैसा कि टाइनबी ने स्वयं को कहा है, मैं जितना कभी भी जान पाऊंगा उन्हें उससे अधिक इतिहास का ज्ञान हो सकता है, किंतु वह इतिहासकार नहीं है, वह एक धर्म दूत है। नैतिकता पांचवा, नैतिकता तथा इतिहास। हमारे समय में इतिहास में अर्थान्वेषण सामान्यतः त्याग दिया गया है। कारण स्पष्टतः इसके अनेक हैं। यह उल्लेखनीय है कि अन्वेष्य अर्थ सदैव स्पष्ट अथवा प्रच्छन्न रूप में नैतिक था। तदनुसार क्या हम यह घोषित करते हैं कि इतिहास नैतिकता विहीन है? कार्ल आर पापर का उत्तर स्वीकारात्मक है, सिवाय उसके जो कि हमने हमसे पूर्व हुए अन्यों के समान उसे प्रदान किया है। तब क्या इतिहास में नैतिक निर्णयों की संभावना नहीं है? यहाँ विविध प्रकार के उत्तर मिलते हैं। यदि सामाजिक समीक्षा के समान इतिहास स्वयं हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होता है, तो इससे यह अर्थ निकलेगा कि ऐतिहासिक निर्णयों को बनाने में हमारे मूल्यों की प्रमुख भूमिका रही है। टॉल्स्टॉय को इतिहास में नैतिकता की खोज में निराशा हाथ लगी। परंपरागत ईसाई धर्म की सत्यता में विश्वासी लोग इतिहास में ईश्वर की अपनी नैतिकता अभिव्यक्त पाएंगे। वे यद्यपि यह आग्रह कर सकते हैं कि चूंकि हम सभी पापी हैं, अतः दूसरों पर निर्णय देने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार के किसी ईसाई अथवा गैर ईसाई नियतिवाद के लिए ईसाइया बर्लिन द्वारा उत्तर दिया गया है। पहले उन्होंने यह आग्रह किया कि है कि इतिहास जीवन है जिस रूप में कि हम सामान्यतः इसे जानते हैं। वहां उनका कहना है कि जीवन की समान परिस्थितियों में हमें निर्णय देना होता है। इसी प्रकार अतीतकालिक घटनाओं तथा व्यक्तियों पर निर्णय देने का न केवल हमें अधिकार है अपितु हम ऐसा करने को बाध्य होते हैं। नैतिकता के विषय में जिस प्रकार हम सामान्यतः व्यक्तियों के कार्यों को अच्छा अथवा बुरा कर वर्णित करते हैं, इतिहास भी इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मृत व्यक्तियों के व्यवहार के विषय में निर्णय देते हुए हम उनके विषय में उसी प्रकार के प्रश्न करते हैं जिस प्रकार जीवित व्यक्तियों के विषय में। बर्लिन तथा बर्कहार्ट के तर्कों में सूक्ष्म विभेद है। जबकि बर्लिन के अनुसार इतिहास पर आरोपित निर्णय परंपरागत ज्ञात निर्णय है, बर्कहार्ट का निष्कर्ष है यह है कि हमारे नैतिक निर्णयों का निर्माण भी इतिहास द्वारा होता है तथा यह कि इतिहास का अध्ययन हमें परिष्कार करता है। जैसा कि आर्टेगा ने कहा है, मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं होता, उसका इतिहास होता है। यह विज्ञान होते ही कि हम नैतिक ज्ञान इतिहास अध्ययन द्वारा पाते हैं, नैतिक निर्णय का प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है। इतिहास को नैतिक अर्थ संसार में सर्वव्याप्त अथवा अनुभवातीत प्रदान करने के प्रयास का बहुतेरे इतिहासकारों द्वारा इस अभिनिश्चयन से प्रत्याख्यान किया जाता है कि स्वयं अपने को एक अर्थ प्रदान करके इतिहास को अर्थ हम ही प्रदान करते हैं और अपने लिए अर्थ की रचना हम मुख्यतः इतिहास के अध्ययन द्वारा करते हैं। मार्जक: क्या इतिहास में कोई अर्थ है? कार्ल आर पापर के अनुसार, पापर की गणना प्रमुख आधुनिक इतिहास विचारकों में की जाती है। वे इस मत के महान समर्थक हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं है। उनकी प्रमुख कृति पावर्टी ऑफ हिस्टारिज्म है। इसमें उन्होंने उन विविध तर्कों को दिया है जो इतिहास को विज्ञान से पृथक करते हैं। परीक्षण तथा अनुमान कर सकने की असंभावना, नवीनता, जटिलता, भविष्यवाणी की सामर्थ्यहीनता, प्रस्तुति की अपरिहार्य चयनात्मकता, कारणात्मक व्याख्या की अपर्याप्तता इत्यादि। दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पापर की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उसने इतिहास के नितांत वस्तुनिष्ठात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार संपूर्ण मानव जाति का कोई सार्वभौमिक इतिहास नहीं हो सकता। यदि इस प्रकार का न कोई इतिहास होना है तो इसे सभी मनुष्यों का इतिहास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक मनुष्य किसी दूसरे की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इतिहास लेखन में हम कुछ को छोड़ते हैं, कुछ का चयन करते हैं और ऐसा करते हुए हम अतीत के विभिन्न वर्गों का इतिहास लिखते हैं और इसे ही मानव जाति के इतिहास की संज्ञा प्रदान करते हैं। यह इतिहास वस्तुतः राजनीतिक शक्ति मात्र का इतिहास होता है, जो भारी पैमाने पर हुई हत्याओं तथा अपराधों के इतिहास से भिन्न नहीं है। और इस प्रकार पापर की यह मान्यता है इतिहास में कोई अर्थ नहीं है। पापर की आलोचना में यह कहा जा सकता है कि अमुक नामक जीव विभिन्न मनुष्यों की समष्टि से अधिक होता है। एक राष्ट्र अपने सदस्यों की सामूहिकता से बढ़कर होता है। इस प्रकार सभ्यता का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यह केवल समान ग्रहण नहीं होती। अतएव इस प्रकार की राष्ट्रीय तथा सभ्यतागत सत्ता के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ मनुष्य दूसरे की अपेक्षा निश्चित रूपेण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरणार्थ न्यूटन तथा आइंस्टीन निस्संदेह वर्तमान तथा अतीत के विविध भौतिक शास्त्रियों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार जब हम मानव जाति के इतिहास का अध्ययन करते हैं, तब कुछ युग, कुछ घटनाएं, कुछ व्यक्ति अन्यों की अपेक्षा अधिक प्रभावी तथा महत्वपूर्ण होते हैं और इस कारण वे तत्कालीन घटनाओं के केंद्र बनते हैं। वस्तुतः लोगों के देशों के महत्व अधिक एवं कम होते रहते हैं। कभी एक प्रकार के कार व्यापार तथा अभिरुचि का जोर होता है, कभी दूसरे प्रकार का। पापर द्वारा प्रस्तुत विभिन्न आपत्तियों के बावजूद मानव इतिहास में एक व्यवस्था का दर्शन होता है, जहां व्यवस्था है वहां अर्थ का अनस्तित्व नहीं हो सकता। मेरी मान्यता है कि इतिहास में कोई अर्थ नहीं है, किंतु यद्यपि इतिहास का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, हम अपने लक्ष्यों को इस पर आरोपित कर सकते हैं। तथा यद्यपि इतिहास का अपना कोई अर्थ नहीं, हम इसे अर्थ प्रदान कर सकते हैं। न तो प्रकृति और न ही इतिहास हमें यह बता सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। चाहे प्राकृतिक तथ्य हो या ऐतिहासिक तथ्य, वे हमारे लिए निर्णय नहीं ले सकते। वे हमारे द्वारा चुने जाने वाले लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर सकते। प्रकृति तथा इतिहास दोनों में ही उद्देश्य तथा अर्थ का आरोपण हमारे द्वारा ही होता है। मनुष्य समान नहीं होते, किंतु हम समान अधिकारों के लिए लड़ने का निश्चय कर सकते हैं। राज्य जैसी मानवीय संस्थाएँ तर्कशील नहीं होती, किंतु हम उन्हें तर्कशील बनाने के लिए संघर्ष करने की सोच सकते हैं। स्वयं इतिहासकार में न तो कोई लक्ष्य है और न कोई अर्थ, किंतु हम इसे दोनों ही बातें देने का निश्चय कर सकते हैं। अंततः यही बात जीवन के अर्थ पर लागू होती है। यह निर्णय लेना हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होगा।